नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने सरकार के समर्थन, हरित प्रौद्योगिकी और मेक इन इंडिया पहल पर जोर देते हुए मोबिलिटी क्षेत्र में निवेश स्थल के लिए भारत की संभावनाओं का उल्लेख किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बंगलुरु में नए अमरीकी वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन की सराहना करते हुए कहा, ये अमरीका के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए आवश्यक। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमीन घोटाला मामले में 14 वर्ष की सजा सुनाई गई। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना तथा चीन की शुआई झांग की जोड़ी मिक्स डबल्स के दूसरे दौर में पहुंची। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के लोगों की आकांक्षाओं से संचालित भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभूतपूर्व कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिन के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के ऑटो उद्योग में पिछले वर्ष 12% की वार्षिक वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया पहल की शक्ति से देश के ऑटो उद्योग की वृद्धि को समर्थन मिल रहा है।
मोबिलिटी में अपना फ्यूचर देखने वाले हर सेक्टर के लिए भारत एक शानदार, इन्वेस्टर के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन है। मैं आप सभी को फिर विश्वास दिलाता हूं, सरकार हर तरह से आपके साथ है। आप मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ इसी तरह आगे बढ़ते रहें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधनों के विकास पर भी ध्यान दे रहा है। देश इस समय मोबिलिटी क्षेत्र में भविष्य को दिशा देने के लिए प्रत्येक निवेशक के लिए उत्कृष्ट गंतव्य स्थल बन गया है।
आज हम एक ऐसे मोबिलिटी सिस्टम के निर्माण में जुटे हैं जो इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को सपोर्ट करे। एक ऐसा सिस्टम जो फॉसिल फ्यूल के हमारे इम्पोर्ट बिल को कम करे। इसलिए आज ग्रीन टेक्नोलॉजी, ईवीज, हाइड्रोजन फ्यूल, बायोफ्यूल्स, ऐसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर हमारा काफी फोकस है।
भारत के ऑटो उद्योग के विकास क्षमता में मेक इन इंडिया पहल की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पीएलआई स्कीम ने मेक इन इंडिया अभियान को नई गति प्रदान की है और 2,25,000 करोड़ रूपये से अधिक की बिक्री की है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस योजना के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। भारत में पिछले कुछ वर्ष में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तीव्र वृद्धि पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 640 गुना बढ़ गई। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो ऑटोमोबाइल और संबंधित व्यापार में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत तिपहियों और ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा विनिर्माता भी है।
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। यहाँ पूरी वैल्यू चेन एंड टू एंड एक साथ एकत्रित हुई है। प्रधानमंत्री जी, आज आपकी उपस्थिति ने हम सबका मनोबल बढ़ाया है।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि ग्लोबल एक्सपो भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में नवीनतम प्रगति को दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को ऑटो क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का विषय है सीमाओं से परे, भावी ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला का सहसृजन। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में 19 से 22 जनवरी तक प्रवेश सभी दर्शकों के लिए निःशुल्क रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक्स में 2 पदक विजेता मनु भाकर, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यह पुरस्कार पिछले 4 वर्ष में खिलाड़ियों के शानदार और सर्वाधिक असाधारण खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पैरा निशानेबाज कोच सुभाष राणा, निशानेबाज कोच दीपाली देश पांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अर्मांडो एग्नेलो कोलाको को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। एथलीट ज्योति यर्राजी और अन्नू रानी, मुक्केबाज नीतू और स्वीटी तथा पैरा तीरंदाज राकेश कुमार सहित 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एथलीट सच्चा सिंह और पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर को लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की गई। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं ने प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित होने पर खुशी व्यक्त की है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पैराशूटर मोना अग्रवाल ने कहा कि ये सम्मान पाकर वे गौरवान्वित हैं।
जो सम्मान दिया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे कोचेस सब साथ में हैं, तो सभी दिल से खुश हैं कि इस बार जितने भी मेडलिस्ट थे जिनको पहले कभी अर्जुन अवार्ड नहीं मिला उन सभी को अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है।
अर्जुन पुरस्कार विजेता एक अन्य खिलाड़ी पैरा तीरंदाज राकेश कुमार ने कहा कि उनकी 8 साल की कड़ी मेहनत सफल हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। श्री शाह ने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि बंगलुरु में अमेरिका का नया वाणिज्य दूतावास भारत और अमेरिका के संबंधों को प्रगाढ़ करने और विस्तार के लिए आवश्यक है। आज बंगलुरु में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों में खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष क्षेत्र, रक्षा, ड्रोन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं।
In an era of AI, of EVs, of space, of drones, I think the and of bio and its we our relationship will be heavily based on technology.
सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम 2 दिन की ओडिशा यात्रा पर आज भुवनेश्वर पहुंचे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिंगापुर के राष्ट्रपति का स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति की इस यात्रा का विशेष महत्व है क्योंकि ये 28 से 29 जनवरी के उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव से पहले हो रही है।
आज सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर उपस्थित रहेंगे ताकि कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को और बेहतर बनाया जा सके। एक नए शहर के विकास के लिए भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण और सिंगापुर के सुरवाना जुरोंग के बीच एक समझौता किया जाएगा। सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में कौशल विकास, हरित हाइड्रोजन कॉरिडोर और पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम निवेश क्षेत्र के विकास के लिए भी समझौता पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
भारतीय मूल के नेपियन सांसद चंद्र आर्य आधिकारिक रूप से कनाडा के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया और सदन को संबोधित किया। आर्य कर्नाटक के तुमकुर जिले के निवासी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी समेत कई निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सोमवार को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर पार्टी का संकल्प पत्र पार्ट 1 जारी करेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संवाददाताओं से बातचीत में आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर दिल्ली में पहले खत्म की गई आबकारी नीति को फिर से लागू करने की घोषणा को लेकर निशाना साधा है।
2026 करोड़ जो सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि पुरानी शराब नीति में इतना घोटाला हुआ है, तो इनका दिल नहीं भरा घोटाले से। अभी भी अरविंद केजरीवाल जो काम कर गए दिल्ली को लूटने का, अब यहाँ की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना अगर ये कह रही हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका मतलब है कि दिल मांगे मौत। तो ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, इनको सिर्फ भ्रष्टाचार ही करना है।
इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने में विद्यार्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
अधिकतर स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50-50 के रेशो में शेयर किया जाए।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। ये मुठभेड़ कल बीजापुर जिले के पामेड़ और बासागुड़ा क्षेत्र में हुई थी। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से नक्सलियों के हथियार भी बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल जवान खतरे से बाहर हैं। सैफ अली खान पर हमला मामले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस उसे आगे की जांच के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन ले गई है। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत में सुधार हो रहा है और उन्हें गहन चिकित्सा इकाई से बाहर भेज दिया गया है। डॉक्टर नितिन डेंज ने बताया कि सैफ अली खान अब खतरे से बाहर हैं। उन्हें आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र में पुणे नाशिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। घटना सुबह नारायण गांव के पास हुई। पुलिस के अनुसार 4 महिलाएं, 4 पुरुष और एक छोटी बच्ची की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और अब खबरें महाकुंभ से। सरकार ने महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र के परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों वाला केंद्रीय अस्पताल स्थापित किया है।
महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं को भी उच्च प्राथमिकता दी है। केंद्रीय अस्पताल के अलावा संक्रामक रोगों के प्रबंधन के लिए मेला क्षेत्र में 2 समर्पित अस्पताल भी स्थापित किए गए हैं, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में केंद्रीय अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि अस्पताल में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड हैं, साथ ही आईसीयू और आपातकालीन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
ये 100 बेड का केंद्रीय चिकित्सालय है, जिसमें 45 बेड पुरुषों के लिए, 40 बेड महिलाओं के लिए आरक्षित है। 5 बेड का हमारा पीडियाट्रिक वार्ड है बच्चों के लिए, 10 बेड का आईसीयू है, लेबर रूम, माइनर और मेजर ओटी की फैसिलिटी हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियंस हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं।
मेला क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में 20-20 बेड की क्षमता वाले 8 छोटे अस्पताल भी संचालित हैं। अस्पतालों में दी जाने वाली सभी चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड के अल कादर ट्रस्ट मामले में 14 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल में बनाई गई अस्थायी अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच ये फैसला सुनाया। मेलबर्न में भारत के रोहन बोपन्ना और चीन की शुआई झांग की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मिक्स डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने सरकार के समर्थन, हरित प्रौद्योगिकी और मेक इन इंडिया पहल पर जोर देते हुए मोबिलिटी क्षेत्र में निवेश स्थल के लिए भारत की संभावनाओं का उल्लेख किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमीन घोटाला मामले में 14 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।